क्योंकि जिस अमेरिका ने हमको परेशान किया पिछले 5-6 महीने में और जिस अमेरिका ने हमारे देश के नेताओं को इतना मजबूर कर दिया है कि वो सरेंडर करने की स्थिति में आ गए हैं, उस अमेरिका को पूरी ताकत के साथ सबक सिखाना भी बहुत जरूरी है। अमेरिका की स्थिति इस तरह के गुंडे की है जो पहले हाथ पकड़ता है, फिर बाह तक पकड़ लेता है, फिर गर्दन पकड़ लेता है और फिर गर्दन दबा दी देता है। अमरीका दोस्त नहीं हुआ किसी का, जापान का नहीं हुआ तो हमारा क्या। तो इस अमरीका के साथ दोस्ती बहुत महंगी पड़ेगी हम, और मुझे ऐसा लगता है कि अमरीका को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। क्यों सबक सिखाना जरूरी है? तर्क बिल्कुल सीधा है। अमरीकी सरकार ने भारत पर आर्थिक पाबंदी इसलिए लगाई कि हमारे वैज्ञानिकों ने 5 आणविक परीक्षण किए। तो मेरा यह मानना है कि अगर हमने सिर्फ 5 आणविक परीक्षण किए और अमरीका ने हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगाई, तो अमरीका ने तो अब तक 1,047 आणविक परीक्षण किए हैं, तो अमरीका पे पाबंदी क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर अमरीकी सरकार सिर्फ इसलिए भारत पर पाबंदी लगा सकती है कि हमने 5 आणविक परीक्षण किए, तो भारत में भी अमरीका के खिलाफ पाबंदी होनी चाहिए क्योंकि अमरीका ने 1,047 आणविक परीक्षण किए, हमने सिर्फ 5 किए, उन्होंने 1,047 किए। और इसलिए भी अमरीका पर पाबंदी होनी चाहिए कि हमने सिर्फ आणविक परीक्षण किए, अमरीका ने तो अणु बम बनाए, और कितने अणु बम है अमरीका के पास? 20,000। और इसलिए भी अमरीका पर आर्थिक पाबंदी होनी ही चाहिए कि हमने तो सिर्फ आणविक परीक्षण किए, अमरीका ने तो अणु बम भी गिराए। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे गिराया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया। जापान के ऊपर 2 आणविक बम गिराए थे अमरीका ने और दोनों आणविक बम में लाखों जापानी मर गए। उसके बाद अमरीका ने बम गिराने का अभियान बंद नहीं किया, जापान के ऊपर बम गिरा के लाखों जापानियों को मारा। उसके बाद 1960 के दशक में उसी अमरीका ने वियतनाम के ऊपर बम गिराए और लाखों वियतनामी मर गए। फिर 1970 के दशक में अमरीका ने कोरिया के ऊपर बम गिराए और लाखों कोरियन उसमें मर गए। फिर 1980 के दशक में मैंने आपको बताया ईरान और इराक पर बम गिराए और लाखों ईरानी इराकी मरे। फिर 1990 के दशक में सिर्फ इराक पर बम गिराए और 80 लाख इराकी उसमें मरे। और अब अमरीका फिर बम गिरा रहा है, एक दिन सूडान पे गिराया, एक दिन अफगानिस्तान पे गिराया, किसी दिन भारत पे भी गिरा सकता, कोई भरोसा नहीं है अमरीका। इसलिए मेरी मान्यता यह है कि अगर अमरीकी सरकार पाबंदी लगा सकती है भारत पर आर्थिक रूप से, तो क्यों नहीं भारत सरकार कानून बनाए और अमरीका पर आर्थिक पाबंदी लगाए अपने देश में। तो आप पूछेंगे इससे क्या होगा? अमरीका को 2 मिनट में हम सीधा कर देंगे। अमरीका की जो सबसे कमजोर नस है उसका नाम है डॉलर। अगर अमरीका में डॉलर जाना बंद हो जाए तो अमरीका 2 मिनट में सीधा हो जाए। अमरीका में एक ही व्यक्ति की, एक ही चीज की पूजा होती है, वो है डॉलर। बाकी अमरीका में किसी से कोई मतलब नहीं है। जिस दिन अमरीकी सरकार को डॉलर का नुकसान होना शुरू हो जाएगा भारत के कारण, उसी दिन अमरीकी सरकार 2 मिनट में सरेंडर कर देगी। अमरीका कागजी शेर है, कोई बहुत दम नहीं है अमरीका। चीन वाले अमरीका से हमेशा सरेंडर करवा लेते हैं सिर्फ डॉलर के धमकी पर। चीन की सरकार कैसे सरेंडर करवाती है अमरीका से? चीन की सरकार ऐसे सरेंडर करवाती है अमरीका से कि चीन से जो डॉलर अमरीका जाता है उसको बंद कर देते, पाबंदी लगा देते हैं। तो जब चीन से डॉलर जाना अमरीका में बंद हो जाता है, 2 मिनट में अमरीकी राष्ट्रपति सीधा हो जाता है और चीन में दौड़कर जाता है समझौता कर। अभी आपको मालूम है बिल क्लिंटन गया था चीन थोड़े दिन पहले, 1,000 लोगों को लेकर गया था, ऐसे जैसे दूल्हे की बारात जाती। तो 1,000 लोगों को लेकर अमरीका चीन में क्या करने गया था बिल क्लिंटन? क्यों गया था? इसलिए गया था कि चीन की सरकार ने एक कानून बना दिया है अभी कुछ दिन पहले। जानते हैं क्या कानून बना? अमरीका की कोई भी कंपनी चीन में आएगी, पूंजी निवेश करेगी, वहां तक तो ठीक है, लेकिन वही अमरीका की कंपनी चीन से पूंजी ले जाएगी उस पर पाबंदी। तो वो कहते हैं ले आओ पैसा, लगा दो हमारे देश में, लेके जाने की अनुमति नहीं। तो अमरीका ढीला हो गया। दूसरा कानून क्या बना दिया है चीन की सरकार ने कि अगर अमरीका की कोई कंपनी मुनाफा कमाएगी और चीन से अमरीका ले जाने की कोशिश करेगी, तो उसके लिए कानून यह है, मान लीजिए कोई अमरीकी कंपनी ने $1 अरब का मुनाफा कमाया चीन में और वो $1 अरब का मुनाफा ले जाना चाहते हैं अपने देश में, तो कानून ये बना दिया है कि पहले आप चीन का $1 अरब का माल अमरीका में बेच कर आइए, उससे $1 अरब कमा कर लाइए, फिर चीन से $1 अरब अमरीका में ले जाइए। और जब से ये 2 कानून बनाए हैं बिल क्लिंटन की पैंट ढीली हो गई और दौड़ दौड़ के रोज चीन जाता है उनसे समझौता करने, और चीनी सरकार उनको घास नहीं डालती। पहले अमरीका ने कोशिश की कि चीन के राष्ट्रपति को अपने देश में बुला लिया जाए, उसने कहा मुझे जरूरत नहीं है आपके आने की, आपको झक मार के आना हो तो आइए। और यही बिल क्लिंटन जो चीन के बारे में कहता था कि ये दुनिया में सबसे अत्याचारी देश है, सबसे ज्यादा लोगों पे अत्याचार होते हैं, चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है, थेनानमन चौक पर एक बार वहां हत्याकांड हुआ था जिसमें चीन के नौजवान मारे गए थे, तब से लेकर चीन को ब्लैकलिस्ट किया हुआ था अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने, उसी बिल क्लिंटन को ले जाकर खड़ा कर दिया चीनी सैनिकों ने थेनानमन चौक पर और कहा कि झुको और सलाम करो इसको, और बिल क्लिंटन को सलाम ठोकना पड़ा वहां। और उसके बाद बिल क्लिंटन ये सब करता गया करता गया करता गया, चीनी सरकार जो कहती गई वो करती गई, इस उम्मीद में कि शायद चीन की सरकार मेरी भी एक बात मान लेगी, ये डॉलर आना शुरू हो जाएगा चीन से। और बाद में जब बिल क्लिंटन ने कहा कि अभी मैंने तो आपकी इतनी शर्तें मान ली हैं, आप तो हमारी एक शर्त मान लीजिए, चीन की सरकार ने कहा कि अभी तुरंत आप यहां से हवाई जहाज लेकर उड़ जाइए अभी। और बहुत ही असफलता के साथ बिल क्लिंटन चीन से वापस लौटा, और इतनी खिंचाई हुई है बिल क्लिंटन की उनके पार्लियामेंट में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। खुद बिल क्लिंटन जिस पार्टी का कैंडिडेट है उस पार्टी के एमपीज ने बिल क्लिंटन की भयंकर आलोचना की कि आप चीन गए थे क्या लेकर आए। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया है कि अमरीका की आर्म ट्विस्टिंग करना अगर हम शुरू करें तो अमरीका हमारे सामने भी सरेंडर करे। अगर हमने इसको अपने सिर पर चढ़ने दिया, इसकी गीदा भभकी में आकर हमने सरेंडर किया तो ये हमको खा जाएगा। और अगर इसकी धमकियों के सामने हमने सरेंडर करना बंद किया, उल्टा इसकी आर्म ट्विस्टिंग करना शुरू किया अमेरिका की, तो अमेरिका दो मिनट में नीचे आ जाए। तो आप पूछेंगे उसका रास्ता क्या? उसका बिल्कुल सीधा सा रास्ता है, जो काम चीन की सरकार ने किया है वो काम हम करते हैं। माने चीन में से डॉलर अगर अमेरिका नहीं जाएगा तो भारत का डॉलर भी अमेरिका नहीं जाएगा। भारत का एक पैसा भी अमेरिका नहीं जाएगा। अगर चीन की सरकार ये काम कर सकती है तो भारत की सरकार भी ये काम कर सकती है। और इसके लिए बहुत अच्छा हो कि भारत सरकार कानून बनाए और पार्लियामेंट से कानून पारित करवाए और अमेरिका के खिलाफ आर्थिक पाबंदी लगाए। और जितनी अमेरिकी कंपनियां भारत में धंधा कर रही हैं इन सबको एक एक करके बंद कर दिया जाए। पेप्सिकोला, कोका कोला, कॉलगेट पामोलिव, जॉनसन एंड जॉनसन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, फाइजर, एली लिली, अमेरिकन लेबोरेटरी, अपजॉन, एडिडास, ये जितनी अमेरिकन कंपनियां, एक तरफ से सब पर पाबंदी लगा दी जाए। और अमरीकी कंपनियों के साथ साथ अमरीकी बैंक, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एएनजेड ग्रिंडलेस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये जितने अमरीकी बैंक भारत में धंधा कर रहे हैं इन सब के ऊपर एक तरफ से पाबंदी लगा दी। तो आप देखिए दो मिनट में अमरीका ढीला होता। अमरीका को ढीला करने का यही एक रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं तो वो आपको खत्म कर देगा।
एक ऐसी लड़ाई होती है जिसके बारे में बड़े विचित्र तरह से कमेंट किया जाता कि या तो दुश्मन को मार दो नहीं तो दुश्मन आपको खत्म। वैसी स्थिति हमारी अमेरिका के साथ है, या तो हम अमेरिका को पीट दें नहीं तो अमेरिका हमको पीट देगा। तो उसके लिए रास्ता क्या है? रास्ता मैंने बताया बिल्कुल सीधा सीधा सा है कि अमेरिका जाने वाला पैसा यहां से रोकना पड़ेगा। एक पैसा भी भारत से अमेरिका जाए ये देश के हित में नहीं है। और आज अमेरिका हमारा दुश्मन है, दोस्त नहीं। दुश्मन के हाथ एक पैसा भी अपने गांव का जाए तो ये देश के साथ गद्दारी है, देश के साथ द्रोह है। तो ये करना बंद करें। तो भारत की सरकार अगर करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सरकार कुछ करेगी, क्योंकि पांच महीने से तो मैं इंतजार कर रहा हूं। जब से अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगाई है मैं एक एक दिन गिन रहा हूं कब भारत की सरकार अमेरिका पे आर्थिक पाबंदी लगाती। और मैंने ये बात मई के महीने में ही प्रधानमंत्री तक पहुंचाई है। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे राजीव भाई आप कभी मिले थे। मई के महीने में ही इन सारी बातों को बहुत ही डिटेल तरीके से ड्राफ्ट बनाकर मैंने प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचा दिया कि आप ऐसे ऐसे पाबंदी लगाइए अमरीकी कंपनियों पर, अमरीकी बैंकों पर, भारत का इतना भला हो जाएगा। और मैंने तो उसमें यह कैलकुलेशन दिए हैं कि अगर अमरीका ने आर्थिक पाबंदी लगाई हमारे ऊपर और वहां से $2 अरब आना बंद हो गया भारत में, $200 करोड़ आना बंद हो गया भारत में, तो अगर हम अमेरिका के सिटी बैंक पर पाबंदी लगा दें, पेप्सिकोला पर पाबंदी लगा दें, कोका कोला पर पाबंदी लगा दें, उनकी दूसरी थॉमसन नाम की कंपनी पर लगा दें, एलजी नाम की कंपनी पर लगा दें, तमाम अमरीकी कंपनियां हैं जिन पर हम पाबंदी लगा दें, तो देश का तो कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला लेकिन ₹1000 करोड़ हर साल अमरीका जाने से बच जाएगा। वहां से सिर्फ $200 करोड़ नहीं आएगा और यहां से ₹1000 करोड़ नहीं जाएगा। लेकिन अभी तक तो सरकार ने सुना नहीं और मुझे अफसोस है, एक बहुत ही गंभीर अफसोस है मुझे। आप पूछेंगे क्या? इस सरकार में तीन ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने एक जमाने में कोका कोला को भारत से भगाया था 1977 में। 1977 में श्री मुरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने और उस सरकार में श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने और उसी सरकार में जॉर्ज फर्नांडीज उद्योग मंत्री बने और उसी सरकार में लाल कृष्ण अडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री बने और 1977 की उस सरकार ने 24 घंटे में अमरीकी कंपनी कोका कोला को भारत से भगा दिया। सिर्फ 24 घंटे लगे थे और कोका कोला को नोटिस दिया गया था कि या तो 24 घंटे में आप भारत छोड़ोगे नहीं तो हम आपकी सारी संपत्ति जब्त करेंगे और कोका कोला भाग गया। यहां कुछ दम नहीं है इन परदेशी कंपनी, एक झटके में कोका कोला भाग गया और कोका कोला भागा उसके पीछे आईबीएम भागा, एक अमरीकी कंपनी जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, कंप्यूटर बनाती है, वो भागी यहां से। फिर आईबीएम के पीछे पीछे आईसीएल भागा, इंटरनेशनल कंप्यूटर्स लिमिटेड, ये भी अमरीका की कंपनी। तो कोका कोला भागा, आईबीएम भागा, आईसीएल भागा और एक एक करके सब अमरीकी कंपनियां भागने वाली थी लेकिन वो सरकार गिर गई तो इसलिए वो काम अधूरा छूट गया। तो मुझे ऐसा लगता था कि जिन सरकारों ने कोका कोला को भगाया, जिन मंत्रियों ने कोका कोला को भगाया, जब वो दोबारा से मंत्री बन जाएंगे इस देश में तो 24 घंटे में कोका कोला को भगाएंगे, पेप्सी कोला को भगाएंगे, लेकिन 5 महीना हो गया है इंतजार करते करते, ना तो कोका कोला को भगाया ना पेप्सी कोला को भगाया। तकलीफ मुझको यह है कि जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे आज प्रधानमंत्री, जो जॉर्ज फर्नांडिस पहले उद्योग मंत्री थे आज रक्षा मंत्री, जो लाल कृष्ण अडवाणी पहले सूचना और प्रसारण मंत्री थे आज गृह मंत्री हैं, माने तीनों का ही प्रमोशन हुआ और तीनों की ही ताकत पहले से ज्यादा। अटल जी तो सीधे प्रधानमंत्री है ना और जॉर्ज फर्नांडिस तो रक्षा मंत्री है ना और लाल कृष्ण अडवाणी तो गृह मंत्री हैं, ये तीनों ही मंत्रालय 1, 2, 3 नंबर के हैं। प्रधानमंत्री होता है, फिर गृह मंत्री होता है, फिर रक्षा मंत्री होता है, फिर वित्त मंत्री होता है, तो 1, 2, 3 पोजीशन पर तीनों वो लोग हैं जिन्होंने कोका कोला भगाया और आज उन्हीं के जमाने में गांव गांव में सबसे ज्यादा कोका कोला बिक रहा है। सबसे ज्यादा अफसोस की बात है। इससे क्या नतीजा निकालना चाहते हैं? मैं एक ही नतीजा निकालना चाहता हूं कि सत्ता के अंदर जाकर चरित्रहीनता कैसे पनपती है उसका यह सबसे बड़ा उदाहरण देखने को। सत्ता के अंदर जाकर सिद्धांतों को कैसे फेंक दिया जाता है, सत्ता के अंदर जाकर आदर्शों को कैसे बलि चढ़ा दिया जाता है उसका यह सबसे नंगा उदाहरण है। तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि यह सरकार करेगी। तो फिर आप पूछेंगे किससे उम्मीद है? मुझे आप लोगों से उम्मीद है, मुझे इस देश के लोगों पर भरोसा है। सरकारें बिक सकती हैं, नेता बिक सकते हैं, पार्टियां बिक सकती हैं, सत्ता और कुर्सी के लिए वो गंदे से गंदा समझौता कर सकते हैं। अब ये देश में बिल्कुल खुला हो गया।
अगर हमने बीजेपी या कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया तो उन लोगों के साथ धोखा हो जाएगा। हम ना बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, ना कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और ना उनकी सपोर्ट लेंगे।
मुझे इस देश के लोगों पर भरोसा है। सरकारें बिक सकती हैं, नेता बिक सकते हैं, पार्टियां बिक सकती हैं, सत्ता और कुर्सी के लिए वो गंदे से गंदा समझौता कर सकते हैं। अब ये देश में बिल्कुल खुला हो गया। कोई पार्टी समझौता करने में किसी से पीछे नहीं और कोई पार्टी कीचड़ और दलदल में गिरने में किसी से पीछे नहीं। हर पार्टी ने रिकॉर्ड कायम किया है कि तू ज्यादा गिरा कि मैं ज्यादा गिरा। और अब इस देश में मैं मानता नहीं कि कोई भी पार्टी राष्ट्रवादी है। हर पार्टी कुर्सीवादी है, सत्तावादी है, स्वार्थवादी। राष्ट्रवादी तो कोई है नहीं इस देश में। अगर ये राष्ट्रवादी होते तो तनख्वाहें बढ़ाते, पगारें बढ़ाते 3-3 गुनी। इस साल तो इनको ये सिद्ध करना चाहिए था कि हमारा राष्ट्रवाद इतना प्रखर है कि हम हिन्दुस्तान में 2-3 साल पगार नहीं लेंगे। कोई नेता भूखा नहीं मरता, कभी मरा भी नहीं है इस देश में। इस देश में 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। इस साल गरीबी और तेजी से बढ़ रही है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, भुखमरी तेजी से बढ़ रही है। भारत के कारखाने बंद हो गए हैं, 2,62,000 कारखाने इस देश के बंद हो गए हैं, 8 करोड़ मजदूर इस देश के बेरोजगार हो गए हैं। पिछले 8 साल से जो उदारीकरण की नीतियां भारत में चल रही हैं उन उदारीकरण की नीतियों का ये नुकसान हुआ है पूरे के पूरे देश को। तो मुझे ऐसा लगता था कि भारत के राष्ट्रवादी नेता कम से कम इतना तो करेंगे कि पगार नहीं लेंगे इस साल, क्योंकि मैंने सुना और मुझे मालूम है कि पाकिस्तान के नेता इस समय पगार नहीं ले रहे। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बिना पगार के काम कर रहा, बिना वेतन के काम कर रहा। पाकिस्तान का राष्ट्रपति बिना वेतन के काम कर रहा। पाकिस्तान के जितने मंत्री हैं, जितने खासदार हैं, बिना वेतन के काम कर रहे हैं। क्यों? अमेरिका ने जब से आर्थिक पाबंदी लगाई है पाकिस्तान की आर्थिक हालत थोड़ी खराब हो गई है, तो पाकिस्तानी सरकारों ने अपने तमाम खर्चे कट कर दिए और सारे के सारे खर्चे कट किए हैं। पहले प्रधानमंत्री ने पगार लेना बंद किया, राष्ट्रपति ने बंद किया, तभी खासदारों ने बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के नेता अगर इतने राष्ट्रवादी हैं तो भारत के नेता तो इससे कई गुना ज्यादा राष्ट्रवादी। लेकिन हमारे नेताओं ने तो सिद्ध ये किया कि उन्होंने पगारें तीन गुनी बढ़ाई। इनके राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा पाखंड है ये, इससे ज्यादा पाखंड कुछ हो नहीं सकता इस देश में राष्ट्रवाद के नाम। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई पार्टी राष्ट्रवादी नहीं है, सब सत्तावादी, कुर्सीवादी, स्वार्थवादी। इसलिए अब इन पार्टियों पर भरोसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि पार्टियों पर भरोसा करते करते ही इतना बड़ा सत्यानाश हमने झेला है इस देश में। नेताओं पर भरोसा करना छोड़ दीजिए, ये नेता कब क्या पलटी खाएंगे। जिंदगी भर जिन सिद्धांतों का विरोध करते रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, अभी उन्हीं सिद्धांतों पर सरेंडर करने जा रहे, ये कैसे मैं स्वीकार करूं इस बात को। जितने भाषण मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के सुने हैं, हर भाषण में यही वो कहते थे कि राष्ट्र की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होता, राष्ट्र की संप्रभुता एक ऐसी चीज है जिस पर कोई समझौता नहीं होता, कोई सरेंडर नहीं होता। अभी वो खुद वही करने जा रहे हैं, तो कैसे मानूं मैं। पर ऐसा लगता है कि सबके सबको धृतराष्ट्र की आत्मा ने लील लिया। धृतराष्ट्र अंधा था, भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र को अंधा क्यों कहते थे जानते हैं। वो इसलिए अंधा नहीं कहते थे कि तुम्हारी आंखें नहीं है, ये तो सच था कि उसकी आंखें नहीं थी। वो अंधा इसलिए कहते थे कि सत्ता मोह में, पुत्र मोह में वो अंधा था, और सत्ता हाथ से ना चली जाए इसके लिए धृतराष्ट्र कुछ भी करने को तैयार था। चाहे जितना अधर्म करना पड़े, चाहे जितना कुकर्म करना पड़े, चाहे जो करना पड़े, सत्ता मेरे बेटों के हाथ से नहीं जानी चाहिए, सत्ता मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए। इसी के लिए धृतराष्ट्र को भगवान कृष्ण ने अंधा किया कि तुम स्वार्थ में अंधे हो। पर आज के नेताओं के बारे में तो मैं यही कहता हूं कि धृतराष्ट्र तो बिना आंखों के अंधा था, वो पुत्र मोह में अंधा था। इन लोगों को कौन सा पुत्र मोह। पूछिए ना श्री अटल बिहारी वाजपेयी से, आपको कौन सा पुत्र मोह। और धृतराष्ट्र आंखें नहीं होने के कारण अंधा था, ये तो सब आंखें होते हुए अंधे। इसलिए अब इन पर भरोसा करना छोड़िए, पार्टियों पर भरोसा करना छोड़िए, अभी तो अपने ऊपर भरोसा करिए। तो आप पूछेंगे दूसरा कोई रास्ता है। हाँ, एक रास्ता है, थोड़ा तकलीफ वाला है, लेकिन अब वही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं। जब सरकारें देश विरोधी काम करना शुरू कर दें, राष्ट्र विरोधी काम करना शुरू कर दें, सरकारें सिर्फ स्वार्थ और सत्ता में डूबकर काम करना शुरू कर दें, तो राष्ट्र के लोगों को उठना ही होगा और खड़ा होना होगा। आप पूछेंगे हम क्या करें। सरकार पाबंदी नहीं लगाती अमरीका पर, और सरकार नहीं बंद करती अमरीकी कंपनियों को, तो कम से कम आप तो पाबंदी लगा दीजिए अमरीकी कंपनियों, आप तो बंद कर दीजिए अमरीकी कंपनियों का सामान खरीदना, ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में है ना। इसके लिए तो प्रधानमंत्री से पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरे घर में अमरीकी सामान आए कि नहीं आए। आप अपने घर के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने घर का फैसला करिए। और आपके घर में यह फैसला होना ही चाहिए कि कोई भी अमरीकी सामान आपके घर में नहीं आएगा, क्योंकि अमरीका हमारा दुश्मन है, और अमरीका हमारा दुश्मन है, और इस स्तर का दुश्मन है कि भारत को बर्बाद करने की कोई भी कोशिश वो चूकना नहीं चाहता। बिल क्लिंटन ने इस बात को दो बार कहा है, इसकी गंभीरता को सोचते रहिए। बिल क्लिंटन ने कहा कि सोवियत संघ को खत्म करने के बाद अब भारत हमारी हिट लिस्ट में नंबर एक पर है, इसलिए भारत को खत्म करना अभी अमरीका का सबसे बड़ा उद्देश्य है।